ओम शांति। आज हमारे बीच हमारी परम आदरणीय संतोष दीदी जी पधारे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। दीदी को देखकर मुझे चार पंक्तियां याद आ रही हैं। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्ष के भांति फलता है कोई कोई, सभी प्रवीण है आदर्शों की बातें करने में, परंतु त्याग के पथ पर चलता है कोई कोई। तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी है हमारी आदरणीय दीदी। आप एक नामी हैं, एक ओनॉमी वाले हैं, जिनके व्यक्तित्व में है। आप संतुष्ट मणि हैं, लाखों भाई बहनों के प्रेरणा स्रोत हैं। कुशल आपका नेतृत्व है, कुशल संचालन एवं आप प्रशासिका भी हैं। बाल्यकाल में ही मम्मा की दृष्टि पड़ी, आप आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े। साकार माता पिता एवं बाप दादा की छत्र छाया में आप पल्लवित हुए। आपने यज्ञ में अथक सेवाएं दी हैं। दादी ब्रजेंद्रा जी के भी सानिध्य में गढ़ी गई एक मूर्त है हमारे आगे। बड़ी दादी भी आपको जिगर में रखती थी। आपने मुंबई में विशेष म्यूनिसिपल गार्डन एडॉप्ट कर ईश्वरीय सेवाओं में एक नया कलम लगाया था। आज भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेकानेक गार्डन में सेवाएं चल रही हैं। और साथ में अव्यक्त बाप दादा ने भी आपको चक्रवर्ती का वरदान दिया है। आप सोशल विंग के चेयरपर्सन भी हैं, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के जोन इंचार्ज भी हैं। साथ साथ संस्था की आप ज्वाइंट चीफ हैं, मैनेजमेंट बोर्ड की आप सदस्य हैं, विशेषताओं से संपन्न हैं। आप दीदी को सुनेंगे। समय का जिक्र किया जिसने, बना वही महान। समय का मूल्य दिया जिसने, बना वही मूल्यवान। तो अंतिम स्थिति की तैयारी हम कैसे करें, वो आज हम आदरणीय दीदी से सुनेंगे। पुनः मैं दीदी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
ओम शांति। अंतिम समय के लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए, इसके ऊपर विचार करने के पहले दो प्रकार का अंत है। एक है हम सभी का पर्सनल अंत, दूसरा है सृष्टि का अंत। जब भी ब्राह्मण भाई बहन आपस में मिलते हैं तो आपस में एक ही प्रश्न पूछते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो लड़ाई है ये ही अंतिम लड़ाई, इस महाविनाश के लिए यही लड़ाई कारणीभूत बनेगी जो अभी चल रही। हमें भी पूछेंगे आप क्या समझते हो कि सृष्टि का विनाश कभी होगा, तो सुनने के बाद ऐसा लगता है ब्राह्मणों को अपना विनाश याद नहीं है, सृष्टि का विनाश ज्यादा याद। इसीलिए सृष्टि के विनाश की फिक्र करते हैं, आपस में एक दो की चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं चारों तरफ वातावरण भी ऐसा है जो देश देश आपस में लड़ रहे हैं। देश के अंदर भी चारों तरफ लड़ाई झगड़े हैं। एक तरफ विनाश के जो औजार वो दिन प्रतिदिन रिफाइन बनते जा रहे हैं, एक दो को धमकी भी देते रहते हैं कि हम इस सृष्टि का अंत कर देंगे। विज्ञान की तरफ से भी पूरी पूरी तैयारी है, ग्रह युद्ध भी दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रकृति भी पूरी पूरी तैयार है इस सृष्टि का अंत करने के लिए। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज है, इधर उधर आती है, वो भी देख रहे हैं हम। दिन प्रतिदिन स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अब सृष्टि के महाविनाश के पहले हमें खुद के अंत की थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें संपूर्ण और संपन्न बन करके पीछे जाना। बाबा को साइंस वाले भी पूछते हैं, बाबा कहते हैं मेरे से पूछते हैं कि हम बटन दबावे हैं। प्रकृति भी पूछती है मैं चालू करूं, मेरा कार्य थोड़ा बहुत तो करते हैं, पर पांचों तत्व मिलकर के हम अपना कार्य चालू करें और उसके साथ साथ एडवांस पार्टी भी पूछती है कि अभी कब इसकी समाप्ति होगी। बाबा से सब प्रश्न पूछते हैं और बाबा बच्चों से पूछता है कि कब चालू करें, क्योंकि जब तक स्थापना वाले तैयार नहीं हैं तब तक सृष्टि का परिवर्तन जो है वो ठहरा हुआ है। परंतु बाबा कहते हैं कब तक, मुझे भी कब तक ठहरना है, इसीलिए बच्चों को जल्दी से जल्दी तैयार होना है। और तैयार होकर के नई दुनिया के लिए और अपने घर के गेट खोलने के लिए बाबा के साथ जाना। बाबा अकेला परम धाम के गेट नहीं खोलता है, बच्चों सहित जाता है और नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ साथ चलना है। इसीलिए बाप और दादा दोनों के समान हमें बनना है। हरेक जो भी ब्राह्मण है उनको अगर सदैव ये स्मृति रहती है कि हमें अब वापस अपने घर जाना है, क्योंकि हमने देखा साकार बाबा को महाविनाश का साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार होते ही बाबा संपूर्ण समर्पण हो गए। कितना बड़ा महान परिवर्तन बाबा के जीवन में आया। मम्मा को जब भी कोई पूछते थे, मम्मा आप इतनी छोटी आयु में मम्मा कैसी बन गई, क्योंकि आपसे तो बहुत बड़ी बड़ी दादियां हैं और पहले आई हुई हैं, तो मम्मा कहती थी मैं कोई खास उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करती हूं, परंतु मुझे सदैव ये याद रहता है कि ये जो घड़ी है यही मेरी अंतिम घड़ी है। आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसको 24 घंटा ये याद रहे कि ये मेरी अंतिम घड़ी है, उस आत्मा की स्थिति कितनी उपराम होगी, कितनी न्यारी होगी। इस विशेषता के कारण ही मम्मा मम्मा बन गई, मम्मा श्री लक्ष्मी बन गई। बाबा के जीवन में इतना महान अंतर आया, एक सेकंड में बाबा ने परिवर्तन कर दिया। हम लोगों ने देखा कि मनमोहनी दीदी भी जैसे जैसे अपनी संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंच रही थी तो उसको भी यही याद था कि अब घर जाना है। जब हम दीदी से मिलते थे तो हम लोगों को तो यही आदत है ना, मिलेंगे तभी भी ओम शांति कहेंगे, विदाई लेंगे तभी भी ओम शांति कहेंगे। तो दीदी कहती थी ओम शांति क्या करते, जब भी मिलते हो तभी कहो ओम शांति और जब विदाई लेते हो तभी कहो अब घर जाना। उसी समय पर ये गीत भी बना कि आदि अंत का मंत्र यही है अब घर जाना। तो हमारे पूर्वजों को भी यही पता था कि अब घर जाना है। आप लोगों ने जानकी दादी को भी देखा, उसको सिर्फ दो ही शब्द याद थे, मैं कौन और मेरा कौन, और कोई डिटेल की बातें नहीं। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, इसी नशे में, इसी स्मृति में रहती थी और सबको स्मृति दिलाती। हमेशा कहती थी, मैं जब शब्द आवे तब ये पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, और मेरा कौन तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाओ। प्रकाशमणि दादी के जीवन में हम लोगों ने देखा, दादी के जीवन में मैं शब्द का अभाव था। कभी भी दादी मैं शब्द नहीं बोलती थी। हम लोग कभी दादी को उसका विचार पूछते थे किसी बारे में, तो दादी कहती थी, दादी का ऐसा विचार, जैसा दादी अलग है और वो अलग है, ये नहीं कहेगी मेरा ये विचार है, कहेगी दादी का ये विचार। तो इतना डिटैच, देह और देह के संबंधों से डिटैच होना, ये परीक्षा सबको पहले पहले देनी, क्योंकि माया के आने के दो ही दरवाजे हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। इन दरवाजों को बाबा कहता है, बच्चे बंद कर डालो, ना मैं रहे ना मेरा रहे, मैं रहूं तो आत्मा रहे, मेरा रहे तो एक बाबा रहे, बाबा ही हमारा संसार है, इसकी स्मृति सदैव रहे, तो स्थिति आप ही उपराम होती जाएगी। हरेक को ये दो परीक्षाएं अंत में देनी है, एक है अशरीरी बनने की, आत्माभिमानी बनने की परीक्षा, और दूसरी है नष्ट मोह की परीक्षा। क्योंकि जब तक आत्माभिमानी नहीं बने हैं, अशरीरी नहीं बने हैं, तब तक बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। बाबा की याद सदैव रहे, बाबा की याद निरंतर रहे, उसके लिए अशरीरी बनने का बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। जितना जितना शरीर से डिटैच होते जाते हैं, कराने वाली मैं आत्मा हूं, इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं, इस स्मृति में जितना जितना रहते हैं उतना उतना बाबा की याद भी स्वतः ही रहती। तो बाबा घड़ी घड़ी, आप बाबा की रोज की मुरली में देखो, बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, आत्माभिमानी बनने के लिए ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि जब तक आत्म अभिमानी नहीं बने हैं तब तक बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। तो इसीलिए हरेक को ये देखना है कि हम कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं, क्योंकि अंत का समय जब आएगा, अंत का समय कैसा होगा ये तो सबको मालूम है कि प्रकृति की भी कितनी हलचल होगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, और हमारे देखते देखते जब महाविनाश होगा तो उसको देखने के लिए कितनी निर्भयता, कितनी शक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। आज सब समाचार सुनते हैं, फलानी जगह बाढ़ आई, सारा बह गया, इतने घर चले गए, इतने शहर चले गए, इतने गांव चले गए, परंतु जब खुद का प्रियजन जाता है तभी मालूम पड़ता है स्थिति क्या है। वो तो समाचार सुनते और पढ़ते हैं, समाचार को देखते हैं, परंतु जब खुद के नीचे पानी आता है तो समझ में आता है कि हमारी स्थिति कहाँ पर है। और अंत के समय यही देखने को मिलेगा, हमारे देखते देखते हमारे प्रियजन डूबेंगे, मरेंगे, जलेंगे, दबेंगे, वो तो जाएंगे परंतु हम भी जाएंगे। और उस समय बाबा कहता है कि अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो पहले से ही बाबा तुमको उस जगह से हटने के लिए इशारा देगा। अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं होगी तो बाबा के इशारे को तुम कैच नहीं कर सकेगे, सेफ जगह पर नहीं जा सकेगे, बाबा के बजे डूब नहीं सकते हैं, जल नहीं सकते, मर नहीं सकते। ऐसे दुनिया वालों जैसा हमारा मौत न हो, आत्मा सहज उड़ करके बाबा के साथ चली जावे, तो उसके लिए बुद्धि की लाइन को क्लियर करने की आवश्यकता है, बाबा के इशारों को कैच करने की शक्ति चाहिए। और उस बुद्धि की लाइन को क्लियर करने के लिए अपने माइंड को क्लीन करना, जितनी जितनी हमारी मनसा साफ होती जाती है, हमारा माइंड क्लीन होता जाता है, उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती है। इसीलिए हमें मनसा में कुछ भी, किसी की भी बुराई, किसी की भी अच्छाई जो है, उसका इफेक्ट हमारे मनसा के ऊपर नहीं रहे। हमारी मनसा सर्व प्रभावों से मुक्त रहे, स्वच्छ रहे और एक बाबा से मनमना भव की स्थिति रहे, इसका हम सभी को पुरुषार्थ करना है। आप अगर यज्ञ की हिस्ट्री देखेंगे तो बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के लिए कितनी मेहनत की। बाबा की जब प्रवेशता हुई, पहले से ही बाबा बैठ करके कापियां की कापियां लिखता था सारा सारा दिन, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पूरी कापी भर के लिख दें। घर में जितने मेंबर थे उनके नाम से अलग अलग कापियां बनाता था, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, राधा आत्मा, जितने मेंबर है सबकी कापियां बना ली। तो बाबा ने कुट कुट के अपने अंदर वो आत्म अभिमानी स्थिति बनाई। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया इसीलिए ब्रह्मा नंबर वन में चला गया, ऐसी बात नहीं। बाबा कहता है मैं इसके तन का आधार लिया तो इसका मैं भाड़ा जरूर देता हूं, परंतु इसको जो पद मिलता है इसके पुरुषार्थ से मिलता। इसने अपने ऊपर इतनी मेहनत किया इसीलिए ये जाके श्री कृष्ण बना। तो हम देखते हैं बाबा ने एक सेकंड में सर्वस्व स्वाहा कर दिया, मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। बाबा हमेशा कहते थे जिसके हाथ ऐसे पहला पुर उसको पहुंचे, ऐसे हाथ माना दानी हाथ, जिसके हाथ ऐसे हैं उसी को पहला पुर अर्थात पहला नंबर मिले। तो ब्रह्मा के हाथ तो लौकिक जीवन में भी ऐसे थे, महादानी था। तो जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई उस समय भी उसने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, बिगर सोचे समझे सब कुछ उसके अर्पण किया, कुछ भी उसने साइड में नहीं रखा। कोई कोई कहते हैं समझते हैं कि अगर हम सब कुछ ईश्वर अर्पण कर देंगे तो हमारा क्या होगा, परंतु वास्तव में देखा जावे तो बाबा कहता है मैंने सब कुछ अर्पण किया तो मेरा क्या होगा। जब सब कुछ अर्पण करके हम चलते हैं, बाबा छोड़ने के लिए नहीं कहता है, प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने को सरेंडर समर्पण समझ करके चलो। जब सब कुछ अर्पण करके चलेंगे तो तुम्हारी बुराइयां जो है उससे तुम छूट जाए, तुम्हारे अंदर जो कमी पेशियां हैं उससे तुम छूट जाएंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसीलिए हमारी जीवन जो है वो ईश्वर अर्पण करने की आवश्यकता है, जितना जितना ईश्वर अर्पण करते जाते हैं उतना उतना हमारा जीवन एक स्वच्छ दर्पण बनता जाता है। अनेक आत्माएं उस दर्पण में अपना मुखड़ा देखती है और मुखड़ा देख के अपने अंदर परिवर्तन करती। देखो बाबा ने तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को इतनी गारंटी दिया हुआ है कि तुम प्रवृत्ति में रहते हो, प्रवृत्ति में रहते हुए भी तुम्हें सदैव ये याद रखना है कि हम शिव बाबा के भंडारे का खा रहे, ये सदैव स्मृति रखो। और बाबा की बच्चों को गारंटी है कि अगर तुम्हारा जीवन इतना समर्पण जीवन है, तुम्हारी स्थिति इतनी अर्पणमय है, तो बाबा तुमको कभी भूख नहीं मरने देगा। भले सारी दुनिया भूख मरेगी, तुम भूख नहीं मरेगे, तुम तो भूख नहीं मरेगे पर तुम्हारे बाल बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे। अभी आप हमारे को बताओ ऐसी गारंटी करने वाला कोई मनुष्य है? तो बाबा हम बच्चों के लिए इतनी गारंटी करता है, पर कौन से बच्चों के लिए गारंटी करता है? जो अपने जीवन को पूरा बाबा के ऊपर अर्पण करके चलते हैं। क्योंकि अगर ये बुद्धि में रहेगा कि मैं कमाता हूँ मैं खिलाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, कर्तापन का भान आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है तुम भंडारे का खा रहे हो तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, तुम्हारे कालकंटक तन के और मन के सारे दूर हो जाएंगे। इसीलिए सदैव ये बुद्धि में रखो, संगम युग माना ईश्वरीय पालना का युग। तो ईश्वरीय पालना देने के लिए हमें उसका पूरा पूरा बच्चा बनना पड़ेगा, पूरा पूरा सरेंडर बुद्धि बनना पड़ेगा, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना पड़ेगा, तभी हम ईश्वरीय पालना के अधिकारी बन सकते हैं। तो एक तो ये जो मैंपन है इसको मिटाने की आवश्यकता है संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए। दूसरा मेरापन छोड़ने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो है वो नष्टो मोहा बन। कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक नष्टो मोह नहीं है तब तक स्मृति स्वरूप बन नहीं सकते। तो जितना जितना देह और देहधारियों से हम नष्टो मोह बनते जाते हैं उतना उतना बाबा की जो स्मृति है वो पक्की होती जाती। अगर खुद की देह को ही छोड़ देते, कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया, अगर हम ही मर गए तो हमारे लिए तो सारी दुनिया ही खलास हो गई। अगर खुद की देह को ही भूल गए तो औरों की देह को कहां से आप याद करें। तो इसीलिए जो मैं और मेरा है, जो माया का आने के ये दो दरवाजे, इसको बंद करके बाबा कहता है इसको डबल लॉक लगाओ। और वो डबल लॉक क्या है? बाबा की याद और सेवा। ये डबल लॉक अगर आप लगा देंगे तो माया की ताकत नहीं है कभी भी आने की। परंतु ये जो मेरापन है तो सिर्फ देह में मोह नहीं होता है, खुद की देह में मोह, फिर देह, देखो हम कितने पिंजरों में फंसे हुए थे, खुद की देह में मोह, फिर देह के संबंधियों में मोह, फिर जात पात का भी कितना भान होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु पदार्थ में भी मोह आसक्ति होती है, ये भी मेरा है ये भी मेरा है ये भी मेरा है। स्थान के साथ भी अटैचमेंट होती है, ईश्वरीय सेवाएं करते हैं उसमें भी अटैचमेंट हो जाती है। बाबा कहता है इन सभी से तुमको मुक्त होना है, अकेले आए और अकेला जाना है। जब देह मेरी नहीं है तो कुछ भी मेरा नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब कुछ नाशवंत। इसीलिए तुम बच्चों के पास जो प्रॉपर्टी है, हमारी क्या प्रॉपर्टी है? हम आत्माओं के पास तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, ये सब बाबा ने हमारे को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी हुई। इसको ट्रांसफर करो। आप वैसा भी देखेंगे अगर एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है तो करेंसी ट्रांसफर करनी पड़ती है। किसी को लंदन जाना होगा तो यहाँ का रुपया नहीं चलेगा, उसको वहां का पाउंड लेना पड़ेगा ना, करेंसी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार यहाँ ये जो स्थूल हम देखते हैं, जो हमारी हमारे पास है, उसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। जब तक इसको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब तक नई दुनिया में हमें कुछ भी नहीं मिलता। इसको ट्रांसफर करना माना क्या, ईश्वर के अर्पण कर देना, ईश्वरीय सेवा में लगा देना। जितना जितना हम ये जो भी हमारे को प्राप्तियां हैं, इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो इसका जो रूपांतर है वो पुण्य में हो जाता, हमारा पुण्य जमा होता जाता है। और जितना जितना हमारा पुण्य जमा होता है, पुण्य बहुत हल्का होता है जो हम साथ में लेके जा सकते हैं, उतना उतना हम पुण्य आत्माओं की दुनिया में ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ भी बाबा ने अपने पास ने रखा, अपना समय, स्वास्थ्य, संकल्प, सब कुछ अर्पण किया। जिस दिन से बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने यज्ञ आके रचा। बाबा हमेशा यही कहते थे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये रुद्र बाबा ने स्थापन किया हुआ यज्ञ है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, बाबा इसका मालिक है, बाबा इस यज्ञ को संभाल रहा है। बाबा की इतनी डिटैच अवस्था थी, बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा ये मेरा। जिस दिन से बाबा की प्रवेशता हुई, उस दिन से बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। कोई बाबा के पास पैसा लेके आते थे, बाबा कहता था जाओ सेवाएं करो, सेवाओं में लगाओ, कभी भी टच भी नहीं किया बाबा ने। और कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि ये सब मेरा है, बाबा ने यही कहा ये सब शिव बाबा का है, मैं भी शिव बाबा का हूँ और ये सब कुछ शिव बाबा का है, ये उसका यज्ञ उसका है, बच्चे उसके हैं। देखो बाबा को ये पक्का होने के कारण कितनी बड़ी परीक्षा यज्ञ के ऊपर आई। बेगरी पार चला, पर बाबा की अवस्था कितनी फर्स्ट क्लास रही, आप समझ सकते हैं। 350 बच्चे घर में हुए और खाने के लिए एक दाना नहीं हुए, तो भी बाबा का यही चेहरा था, बाबा का चेहरा बदली नहीं। अवस्था इतनी अचल और अडोल किसके लिए रही, क्योंकि उसने कभी मेरा नहीं समझा। अगर मेरा समझता था तो सेक आती थी, परंतु उसने सदैव क्या समझा, ये सब कुछ बाबा का है और मैं इससे न्यारा, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं संभालने वाला। जब ये बाबा के साथ हम लोग ब्रह्मा भोजन खाते थे, तो बाबा को क्या याद कराता था, बाबा कहता था शिव बाबा को याद करके, इस भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो, याद कराता था मैं भोलेनाथ के भंडारे का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। है ब्रह्मा भोजन, परंतु किसका भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा। इसीलिए भोलेनाथ का भंडारा कभी भी खुड़खुड़ करेगा, परंतु कलास नहीं हो, बच्चों को भूख नहीं मरने दिया उसने कभी भी। तो बाबा के अंदर ये जो न्यारापन था, डिटैच, सबके साथ रहते हुए बाबा बच्चों को कितना प्यार देता, कितना स्नेह देता था। हम जब पार्टी लेके आते थे, उसमें हर प्रकार के लोग होते थे, वृद्ध भी होते थे, जवान होते थे, बच्चे होते थे। जब बाबा से विदाई लेते थे, सब रो रो के जाते थे, परंतु बाबा एकदम ऐसा न्यारा रहता था जैसा कुछ है ही नहीं। इतना स्नेह देता था बाबा सब, स्नेह देते हुए भी कभी भी बाबा की किसी में बुद्धि गई नहीं। बाबा से कभी कभी बच्चे पूछते थे, बाबा आप हमारे को याद करते हो, बाबा कहता था खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो और ना याद रहो, विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो, दोनों भी बातें करता। तो इतनी न्यारी अवस्था बाबा ने अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई, बाबा ने अपने ऊपर फुल अटेंशन रखा, बाबा ने अपना तन जो है वो पूरा पूरा सेवा में लगाया, सिर्फ धन नहीं लगाया, मन तो लगाया, तन तो शिव बाबा को दे दिया। बाबा ने एक बार शिव बाबा को तन देने के बाद कभी भी ये नहीं कहा ये मेरा तन है, बाबा हमेशा कहता था ये शिव बाबा का रथ है, ये हुसैन का घोड़ा है, कभी भी मेरा नहीं कहा उसने, क्योंकि शिव बाबा को दे दिया तो दे दिया, मेरापन नहीं था उसे। और बाबा ने अपने तन को इतना घिसाया सेवाओं में, बाबा ने अपना आराम का समय भी सेवा में लगाया। बाबा कभी कभी सारी सारी रात सोते नहीं थे, बाबा से पूछते थे बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या है, तो बाबा कहता था कैसे नींद आएगी, रात को ये बांदेलियां पुकारती हैं, दुखी आत्माएं अशांत चिल्लाते हैं हमारे को बचाओ, हमारे को सुख दो, हमको शांति दो, आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ता है। बाबा को आवाज सुनाई पड़ते हैं, बाबा उनको साकाश देता है, बाबा उनको लाइट देता है, बाबा उनको माइट देता है। हम लोगों को आवाज नहीं सुनाई पड़ती क्योंकि हम अपने आवाज में रहते, इसलिए हमको आवाज नहीं सुनाई पड़ती। अभी मैं आवाज कर रही तो मेरे को दूसरे का आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा। तो वैसा हम सदैव आवाज में रहने के कारण क्या होता है, दुखी आत्माओं की आवाज नहीं सुनते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम भी बाप समान हो, तुम्हारे को भी सबके ऊपर रहम आना चाहिए, सबके ऊपर दया आनी चाहिए, तुम्हारे को इन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने का मैंने कार्य दिया हुआ है, ब्राह्मणों को क्यों पैदा किया बाबा। बाबा हमेशा हमें याद दिलाता है तुम सर्व के पूर्वज, तो जब सबके पूर्वज है, पूर्वजों का काम क्या होता है, अपनी बिरादरी को सुखी रखना, ये पूर्वजों का काम होता है। तो ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है, तो सारे विश्व को सुख और शांति देना ये हमारा काम है। मैं अभी अभी आ रही थी तो बाबा के अव्यक्त बाप दादा के बहुत अच्छे महावाक्य चल रहे थे। बाबा ने कहा देखो आप सदैव अपनी मनसा को बिजी रखो, सुख दो, शांति दो, वाइब्रेशन दो, विश्व को सुख शांति आनंद शक्ति के वाइब्रेशन दो। आप जितना जितना अपनी मनसा को बिजी रखेंगे, देने का काम करेंगे, उतना उतना आपको अपने स्वभाव और संस्कार परिवर्तन करने में सहज हो। मनसा को बिजी न करने के कारण तुम्हारे में परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए मनसा को बिजी करना सीखो, क्योंकि अंत के समय यही काम आने वाला है। ये सारे साधन तो निकम्मे हो जाएंगे, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। अभी तो बहुत कुछ, अभी देखो ये कोरोना का समय था, सभी ने घर बैठे बाबा की मुरलियां सुनी, सब कुछ वह साधन है, अंत में ये साधन थोड़ी रहेगी। कोई कहां वो बताते हैं ना, विनाश के समय भगवान के बच्चे छिड़ विछिड़ हो गए, फैल गए इधर उधर, ऐसा थोड़े ऐसा संगठन होगा, इतने इकट्ठे हो गए आएंगे जाएंगे, आप समझो हम आकर के बैठ के योग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबको अपनी अपनी तैयारी करनी है उसके लिए कि हम उस समय का मुकाबला कर सके बाबा के साथ रहकर। तो बाबा ने तभी कहा तुम अभी देना सीखेंगे तो ये अंत में तुम्हारे को काम में आएगा। तो एक तो हमें खुद की तैयारी करनी है, उपराम रहना है, मैं और मेरे का त्याग करना है, नश्यो मोहा बनना है, बाबा ही हमारा संसार है, इस बात को बुद्धि में रखते हुए प्रैक्टिकल में चलना है। और दूसरा हमारे को सृष्टि के अंतिम समय के लिए क्या करना, क्योंकि बाबा कहता है तुम बच्चे जो हैं, तुम बच्चों के द्वारा ही मैं सर्व को प्राप्तियां कराता हूं। हम सब बाबा के हैंड्स हैं, इसीलिए ब्रह्मा को सहस्र भुजा वाला, हजार भुजा वाला बताते, ये भुजाएं बच्चों की निशानी। आज देखो किसी को भी कोई चीज देनी होती है तो कैसे देते, हाथ से देते ना। आज हमें किसी को रुमाली देगी तो हाथ से देगी, लेने वाला भी हाथ से लेगा, परंतु क्या कहते फलाने ने मेरे को दिया, पर कैसा दिया, हाथ से दिया ना। तो वैसा भगवान भी जो सबको अनुभूतियां कराएगा वो हम हाथों के द्वारा ही कराएगा, हम बच्चों के द्वारा ही कराएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपना स्टॉक फुल करो, स्थूल स्टॉक तो अलग रही परंतु सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का अपना स्टॉक फुल करो, क्योंकि अंत के समय तुम्हारे को आत्माओं को देने का काम करना है। अभी तो देना है, अभी तो मुख से ज्ञान दे सकते हैं उनको, उनको बैठ के योग करा सकते हैं, अंत में तो तुमको मिलने वाले ही नहीं है, तुम्हारे को मनसा के द्वारा ही सब कुछ करना। तो जब मनसा के द्वारा करना है तो उसके लिए तुम पहले से ही क्या करो, अपना स्टॉक फुल करो। बाबा कहते हैं अंत के समय तो तुम्हारे पास ऐसी लाइन लगेगी तुमको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं रहेगी, पहले ऐसी लाइन लगेगी, लास्ट में तो कुछ भी नहीं रहेगा, लास्ट में तो आना जाना भी यही बंद हो जाएगा, परंतु पहले तो ऐसी लाइन लगेगी। ऐसी ऐसी आत्माएं आएगी जिनमें हिम्मत ही नहीं होगी, तो बाबा कहते ऐसी हिम्मतहीन आत्माओं को तुम्हें हिम्मत की टांगें देनी पड़ेगी, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं, हम सोल्जर हैं। सोल्जर के दो गुण होते हैं, एक है निर्भयता और दूसरा है हिम्मत। हिम्मत नहीं होगी तो भी कुछ नहीं कर सकते, कितने भी रिफाइन अस्त्र शस्त्र हो गए हाथ में से गिर जाएगी, हिम्मत नहीं होगी, और अगर भय लगेगा तो भी गिर जाएगा अस्त्र शस्त्र। तो इसीलिए हमारे अंदर हिम्मत भी चाहिए, और हमेशा क्या कहा जाता है, हिम्मत बांध बच्चे मदद दे बाप। अगर हम हिम्मत करते हैं तो बाबा 100 कदम हमारे को मदद देने के लिए आता है, पर अगर हमारे में हिम्मत नहीं होती है तो हमको मदद नहीं मिलती। कोई कोई बाबा को, बाबा हमारे को मदद करो, बाबा ऐसा मदद नहीं करते है। बाबा कहते हैं तुम एक कदम तो उठाओ, मैं आ रहा हूँ सामने से, पर तुम एक कदम भी उठाने को तैयार नहीं होगी तो मदद कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए हिम्मत और निर्भयता, ये दो गुण हमको अपने में अंत समय के लिए बहुत काम में आएंगे। और निर्भयता का आधार है अशरीरी बनने के ऊपर, जितना जितना हम अशरीरी बनेंगे, क्योंकि आत्मा ये अकाल मूरत, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। तो आत्मा जो अकाल मूरत है, अगर ये स्मृति हमारे को रहती है, पहले से हमारी स्थिति वैसी बनी हुई होती है। बाबा ने आज भी कहा ना, अपने तखत से उतरते क्यों, अपने तखत के ऊपर सेट हो जाओ। तो जितना जितना हम अपने भ्रुकुटी के तखत पर रहते हैं उतना उतना हमारे को निर्भयता आती है, मौत का डर भी निकल जाता। तो फिर जो लास्ट में सीन चलेगी, दर्द नहाक सीन चलेगी अंतिम समय पर, उसको देखने की तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। और ये जो गायन है, मिरवा मौत मलू का शिकार, इसका अर्थ समझते हो ना, जो शिकारी है वो शिकार करता है। तो जो मलुक होता है, मरु होता है, मरु माने शिकार जो होता है, उसकी तो मौत होती है, पर मलुक को क्या है, खुशी होती है उसको, शिकारी को तो शिकार मिल जाता है ना, इसीलिए वो खुशी में होता है। तो बाबा कहता है तुम मलुक है और ये सारा शिकार तुम देखेंगे, परंतु तुम खुशी से नाचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है जब तक ये पुरानी दुनिया खत्म नहीं होगी तो नई दुनिया कहाँ से आएगी। तो तुम्हारी स्थिति उस समय भी सदा आनंदमय बनी रहेगी अगर तुम अभी से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी से अगर तुम निर्भय होकर के चलेगे, अभी से अगर तुम्हारे अंदर वो गुण रहेंगे, तो क्या होगा, तुम अंत में सभी को दे सकेंगे। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, दाता के बच्चे माना देने वाले, और हम देवता बनने वाले, देवता माना भी देने वाले और दाता माना भी देने वाले। तो सिर्फ हमको खुद के लिए ये स्टॉक नहीं जमा करना है, पर हमें सबको देने के लिए ये स्टॉक जमा करना। बाबा कहते देखो, ये जो अविनाशी प्राप्तियां हैं बाप के द्वारा, ये जितना तुम बांटेगे उतनी बढ़ने वाली, आप जितना ज्ञान दे उतना आपको ज्ञान का अथाह भंडार आपका खुलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप औरों को खुशी दो, आपकी खुशी बढ़ेगी, आप औरों को शक्ति दो, आपकी शक्ति बढ़ेगी। दूसरे जो स्थूल धन होता है, जो स्थूल पदार्थ होते हैं, वो बांटने से खलास होते हैं, खत्म होते हैं, परंतु ये जो अविनाशी धन और पदार्थ है, ये जितना हम औरों को देते हैं उतना क्या होता है, हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो इसीलिए लास्ट में हम सभी को बांटने का है, देने का है, तो इतना हमारा बैंक बैलेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। परंतु क्या होता है, कारण क्या होता है इसका, कम क्यों हो जाता है? इसका कारण ये है कि दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति जो है वो अंदर से आती है, परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है। परंतु चलते चलते क्या करते हैं, स्वस्थिति के लिए जो समय देना चाहिए, स्वस्थिति के लिए जो शक्तियां लगानी चाहिए, वो लगाने के बजाय परिस्थिति से उलझ जाते। तो जब परिस्थिति से उलझ जाते हैं तो उसको निपटाने में शक्तियां और समय लगा देते हैं, तो स्वस्थिति बनाने में समय और शक्तियां नहीं मिलती, जिसके कारण क्या होता है, स्वस्थिति कमजोर हो जाती है। और स्वस्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा हमारे को ये ध्यान में रखना है कि हमारे को अपनी स्वस्थिति जो है, स्वस्थिति को हमारे को पावरफुल बना करके रखना, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। बाबा ने हमें सर्व शक्तियां वर्षे में दी हुई है, उन शक्तियों को हमारे को कार्य में लगाना है। किस कार्य में लगाना है, अपनी स्व उन्नति के लिए और विश्व कल्याण के लिए लगाना है, परिस्थितियों से नहीं हमको उलझना है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी हमारे को युक्तियां बताई हुई है कि कोई भी परिस्थिति आती है, तुम एक सेकंड में उड़ जाओ, ऊपर ऊपर चले जाओ, ऊपर जाके तुम परिस्थिति को देखो, तुम्हारे को खिलौना दिखाई पड़ेगा। जैसा देखो हम यहाँ बैठे हैं, सब कुछ देखते हैं तो दिखाई पड़ता है सारा, परंतु आप ऊपर प्लेन से देखेंगे तो ये हॉल वाल ये वो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। जितना ऊपर जाएंगे उतना ये सब चीजों का रूप एकदम छोटा होते होते गायब हो जाएगा। तो उसी प्रकार जितना जितना हम अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होते हैं और पीछे किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, किसी भी बात को देखते हैं, वो हमको खिलौना दिखाई पड़ता है। परिस्थिति से हमारी स्थिति हलचल में नहीं आती है, परंतु वो देखते हुए भी हम अलग रह सकते हैं, अपनी स्थिति को पावरफुल बना सकते हैं। और जब तक हमारी स्थिति पावरफुल नहीं होगी, आप दूसरों को पावर देंगे कहाँ से? पहले तो हमारे पास पावर चाहिए ना। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो पावर है वो कभी लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो पानी की टाकी है, ऊपर से पानी भर रहा है और नीचे अगर उसको छोटा सा भी होल है कहाँ, तो क्या होता है, वो सारा लीक हो जाता है। तो उसी प्रकार हम बाबा से बुद्धि का योग लगा करके अपने अंदर शक्तियां भरते हैं, पावर भरते हैं, परंतु वो जो पावर है उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज कैसा होता है, व्यर्थ संकल्पों के द्वारा लीकेज हो। एक तरफ तो बाबा को याद किया हमने अमृत वेले, उसके बाद अगर हम व्यर्थ संकल्प फालतू संकल्प बैठ के उठाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो शक्तियां नष्ट होती जाती। तो शक्ति लिया परंतु उसको लीक कर दिया तो हम तो वही निर्बल रह गए ना। इसीलिए छोटी परिस्थिति भी हमको बड़ी लगती है। जैसा शरीर में अगर ताकत नहीं होगी तो क्या होता है, एक कुर्सी भी कोई उठाने को बोलेगा ना, कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठती है, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं। तो उसी प्रकार आत्मा में अगर ताकत नहीं है तो छोटी सी भी कोई बात आती है, समस्या आती है, परीक्षा आती है, तो उसको देखकर क्या क्या होते हैं, घबरा जाते, उसको देख के डर जाते हैं, और डरने के कारण क्या होता है, फेल हो जाते। परंतु हम अगर अपने पास शक्तियों को सेव करें, अपने पास स्टॉक जमा करें शक्तियों का, तो हमारे को कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी तो सामना करने की शक्ति हमारे को क्या करेगी, उस समय काम में आएगी, हम डट के उसके साथ मुकाबला कर सकेंगे। और ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परीक्षा आती है, वो हमको पीछे हटाने के लिए नहीं आती, आगे बढ़ाने के लिए आती। अगर आप उसका ठीक रीति से सामना कर सकते हैं तो आपको कोई ना कोई शक्ति दे के जाती। समझो कोई क्रोध करता है और उस समय आप अगर शांति में रहे तो क्या हुआ, आपको सहन शक्ति मिल गई। तो अच्छा हुआ ना उसने बिचारे ने किया क्रोध और हमारे को सहन शक्ति का वरदान मिल गया। परंतु परिस्थिति को देखते इसने ऐसा कैसा किया, इसने ऐसा कैसा किया। कोई कोई कहते हैं बहन जी हमको कभी क्रोध नहीं आता है, परंतु कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत क्रोध आता है। क्रोध आता नहीं है पर कोई झूठ बोलेगा तो क्रोध आता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा विचार करो, उसने झूठ बोला, रॉन्ग किया या राइट किया? रॉन्ग है ना। सामने वाले ने झूठ बोला वो रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है। और हमने क्रोध किया वो रॉन्ग है या राइट है? हमारा भी रॉन्ग उसका भी रॉन्ग, फिर कौन सुधारेगा? सामने वाले ने समझो झूठ बोला और दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर क्रोध किया, ठीक है। अभी झूठ बोलने वाला तो छूट गया झूठ बोल के, परंतु जिसने क्रोध किया, बहुत क्रोध किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी डायबिटीज बढ़ गई, ज्यादा क्रोध करेगा तो ऐसा ही होगा ना, उसका हार्ट बीट बढ़ गया। झूठ उसने बोला और सजा किसको मिले? सजा किसको मिले? ये समझदारी है। वास्तव में जिसने गलती किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये तो सामने वाले को सजा मिल रही है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो समझ दी हुई है उस समझ को हमारे को प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा कोई झूठ बोलते थे ना उसको सीधा नहीं करते थे कभी। ब्रिजेंद्रा एक आपको उदाहरण बताती, लौकिक जीवन में भी बाबा का जीवन ऐसा ही था। ब्रिजेंद्रा दादी सुनाती थी, बाबा का तो जवाहरात का धंधा था बहुत, तो जितने भी वहां सिंध के व्यापारी लोग होते थे जवाहरी, वो बाबा से हीरों का मूल्य ये पक्का करने के लिए आते थे, क्योंकि बाबा की जो आंख थी ना वो हीरा परखने में नंबर वन थी। तो इसीलिए बाबा जो भाव बोलेगा वो सब भाव देते थे। तो एक दिन एक व्यापारी आया तो बोला, उस व्यापारी ने पुड़ी में हीरे लाते थे ना, पुड़ी में हीरे लाए बाबा को बताने को कि इसका मूल्य कितना होगा। तो बाबा किसी काम में बिजी थे, बाबा ने कहा वो रख दो मैं देख के पीछे बताता, वो रख के चला। बाद में जब ही बाबा फ्री हुआ तो पुड़ी गायब, और बाबा के इस पर दुकान में बहुत ईमानदार लोग थे सब, बाबा खुद ही ऐसा था, तो बाबा का तो बहुत उन पर भरोसा था, कोई उठा नहीं सकता है। इधर ढूंढ उधर ढूंढ, सबने बहुत ढूंढा, बहुत कीमती हीरे थे, सबने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, फिर मिला ही नहीं। फिर बाबा को ख्याल में आया कि एक आदमी आया था, हमेशा आता था, वो कुछ काम करता था, इनके पास आता था, वो छोटे दो बच्चों को ले आया था अपने साथ। वो आदमी तो बड़ा ईमानदार था, वो छोटे बच्चों ने उठाया होगा। तो बाबा ने कार निकाली और सीधा उसके झोपड़ी में गया, झोपड़ी में रहता था। तो बाबा वहां गया और जाकर के छोटे बच्चे को पहले बुलाया, उसको कहा बेटा इधर आओ, तुम लोगों ने वहां जो दुकान में से वो जो भी पुड़ी उठाई चमकने वाले जिसमें हीरे थे, तो वो कहां रखी है? क्योंकि तेरे बड़े भाई ने बता दिया है मेरे को। तो उसने कहा उसने बता दिया क्या? मेरे को तो मना किया था, उसने आपको कैसा बता दिया? तो वो ले गया बाबा को वहां। इन्होंने क्या किया था, वो पुड़ी आकर के अपनी झोपड़ी में ऐसा अंदर लकड़ियां होती है ना झोपड़ी के, उसके अंदर घुसा के रखी हुई थी। तो उसने जाकर के निकाल के दिया बाबा को। बड़ा भाई भी बहुत ये हो गया, बहुत घबरा गए, सभी घर वाले भी घबरा गए। तो बाबा ने उस भाई को बोला, उनका जो बाप था, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बच्चे है, इन्होंने ऐसा किया। तो बाबा ने उन बच्चों को भी कुछ नहीं बोला, उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा कपड़े वाले की दुकान के पास लेके गया, कपड़े की दुकान में ले गए। उधर उन लोगों को कपड़े दिखाए दिलाए सब दोनों को भी। फिर उसके बाद उनको मिठाई वाले की दुकान पर लेके गया, बोला तुमको क्या क्या मिठाई चाहिए लियो। फिर उन्होंने मिठाई खरीद किया जो चाहिए था। फिर बाबा ने फिर उनको सिखा दिया। बाबा ने कहा देखो तुमको जो भी चाहिए ना वो मांग के लेना, ऐसा नहीं उठाना, ये चोरी होती है। नहीं नहीं दादा हम अभी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मतलब शुरू से ही बाबा के अंदर वो संस्कार थे, क्योंकि फर्स्ट नंबर की आत्मा थी ना, तो अलौकिक में तो बाबा के अंदर वो दिव्यता थी, परंतु लौकिक में भी बाबा की जो दिव्यता थी ना वो गई नहीं। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये देखना है कि दूसरों को देख के हमें अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना, हमें अपने नियमों को नहीं तोड़ना है, हमको सदैव अपनी मर्यादाओं पर रहना है, क्योंकि हमको वापस अपने घर जाना। तो जब वापस जाना है तो ऐसा तो हम कम से कम कर्म करें, ऐसी तो हम कमाई करें जो बाबा के साथ हम एक सेकंड में उड़ के हंसते हंसते अपने घर में चले जाएं। तो जितना अटेंशन हम अपने ऊपर देते हैं उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और जो भी परिस्थितियां आती है, परिस्थितियां तो बाबा ने पहले से ही बता दिया, बहुत परिस्थितियां आने वाली है, भयंकर परिस्थितियां आने वाली है, तो उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी है कि कोई भी परिस्थिति आवे परंतु हमारे पास इतना शक्ति का स्टॉक जमा होवे और हमारे से जो शक्ति और शांति मांगने को आवे हम उसको दे सके, हम उनको हिम्मत दिला सके। क्योंकि ऐसे समय पर, अंत के समय पर हिम्मत की भी बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो जितना जितना हम खुद हिम्मत में रहते हैं, शक्ति स्वरूप में रहते हैं, इतना इतना औरों को दिला सकते हैं। उसके लिए हमको तैयारी करने की जरूरत है, उसके लिए अपने अंदर शक्तियां भरनी है, कभी भी लीक नहीं होने देना है शक्तियों को, दिव्य गुणों को धारण करना है, किसी को देखना नहीं है, किसी से भी रीस नहीं कर। बाबा ने हमें रेस करना सिखाया, रीस करना नहीं सिखाया। रीस जो होती है वो अवगुण है और रेस जो होती है वो दिव्य गुण। तो आगे भागो तुम औरों के, परंतु रीस नहीं करो। वो ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, नहीं, वो कुछ भी करे उसका पार्ट है, मेरे को क्या करना है ये मुझे सोचना है। तो जब इतना हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तभी अंत का समय जब ये आएगा तभी उसका भी मुकाबला कर सकेंगे और हमारा जो अंत है वो भी सहज होगा और सहज ही हम बाबा की गोदी में चले जाएंगे। ओम शांति।